Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Puran ki bhasha hai. ब्रह्मा ने विचार किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस प्रयोजन के लिए आया हूं, यहां मेरे अलावा और कोई नहीं है, क्यों नहीं है, मेरा कारण क्या है, मैं क्यों आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। इस प्रकार से जब चिंतामग्न हो गए ब्रह्मा जी, तब आकाशवाणी हुई, दो शब्द प्रयोग कर दिया, त और प। तो उनके हृदय में वो त और प ये भाव पहले स्फुरित हुई। ब्रह्मा जी तुम तप करो तो सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप शब्द का अर्थ वहां किया गया है तप माने पूर्व कल्प की चिंतन। और जैसे ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर चिंतन करना आरंभ किया तो उनके हृदय में सारे वेद राशि प्रकट हो गए। और जिस वेद में सारी सृष्टि की रचना करने का फॉर्मूला विद्यमान था, कैसे आगे सृष्टि करनी है, भूत सृष्टि कैसे करनी है, जीव सृष्टि कैसे करनी है, वो सारे के सारे विधि, सारे के सारे उपाय उस वेद में सन्निहित था। और उसी के माध्यम से ब्रह्मा जी ने आगे सारे सृष्टि का विस्तार किया। ये भागवत का प्रसंग है, इसी श्रुति से मिलता जुलता वो प्रसंग है। यहां पर भी वही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि करने के बाद परमात्मा ने उस ब्रह्मा को, प्रथम शरीरी को, अपने में लीन होकर रहा हुआ सारे वेद राशि को प्रकट कर दिया। यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तस्मै ब्रह्मणे। उस प्रथम शरीरी को सारी वेद राशि पढ़ाया, अध्ययन कराया, यानी प्रकट कर दिया, उसके हृदय में प्रकट कर दिया। तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम। लेकिन एक बात और है, ब्रह्मा जी को सारे वेद राशि प्रकट कर तो कर दिया, लेकिन उस वेद राशि में विद्यमान जो वेदांत पक्ष था, यानी उपनिषद, वेदांत के भाषा में उसको औपनिषद विद्या बोलते हैं, उपनिषद संबंधी विद्या, औपनिषद विद्या, जिस विद्या का विषय सृष्टि से संबंध नहीं रखता है, जिस विद्या का विषय जगत रचना से संबंध नहीं रखता है, जिस विद्या का विषय सीधे ही अविद्या का आवरण को भंग करके परमात्मा को बोध कराने से संबंध रखता है, वह औपनिषद विद्या। वह आगे इस श्वेता सूत्र के उपनिषद के मंत्र में आता है, वह तो बिना जिज्ञासुओं को देना ही नहीं चाहिए। इसलिए परमात्मा ने वो औपनिषद ब्रह्म विद्या को सक्रेस रखा, छुपा कर रखा, अपने पास रहस्यमय रखा। तो ब्रह्मा जी ने फिर विचार किया कि ये जगत सृष्टि और जगत संबंधी सारी के सारी वेद राशि तो मेरे सामने प्रकट किया, लेकिन वो ब्रह्म संबंधी विद्या मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट किया, क्यों छुपा के रखा है। तो बोले वो आत्म संबंधी विद्या है, ब्रह्म संबंधी, परमात्मा संबंधी है। वह तो मुमुक्षुर्वई शरणमहम प्रपद्ये, तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम। उस परमात्मा को प्रकाशित करने वाली जो आत्मा संबंधी बुद्धि है, उस बुद्धि की प्राप्ति के लिए तो फिर उसी के शरण में जाना पड़ेगा। उसके शरण में जाने का मतलब है कि उसके लिए तुम्हारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, तीव्र मुमुक्षुता। ये मुमुक्षु किसके लिए मुमुक्षु? मुक्त होने के लिए जो तीव्र इच्छा, उसी को तो मुमुक्षा कहते हैं। बंधन से मुक्त होना जो चाहता है वो मुमुक्षु, संसार से छूटना चाहता है वो मुमुक्षु। अब जब संसार से छूटना चाहता है, वह मुमुक्षु है, फिर संसार संबंधी कारणों को पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार से छूटना चाहता है, जिस वस्तु को तुम चाहते ही नहीं हो फेंकना चाहते हो, जब फेंकना ही है उसको, फिर ये कैसे बना, ये क्यों बना, किसके लिए बना, किसने बनाया, अनुसंधान करने की क्या आवश्यकता है? है तुम्हें ये माला पसंद नहीं है तो कितने में आई है, कहां से आया है, कैसे बनाया है, किस खेत का ये फूल है, पसंद नहीं आया उसका फेंक दो, खत्म हो गया, उसका विचार करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तुम्हें माला पसंद आ गई है तो फिर अनुसंधान करो। संसार पसंद में आ गया, तुमको संसार अच्छा लग रहा है तो संसार के बारे में अनुसंधान करो। लेकिन जब संसार अच्छा ही नहीं लग रहा है तो इससे तुम छूटना चाहते हो, बचना चाहते हो, हटना चाहते हो, तब फिर इसके बारे में क्या करें? तो बोले मुमुक्षु, तब हो गए मुमुक्षु। फिर तुम्हें तो परमात्मा का ही शरण ग्रहण करना चाहिए। गीता में भी जगह जगह ये शरणागति भगवान ने बताया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सभी धर्म का परित्याग करके तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं पुण्य और पाप का हेतुभूत जो संसार है, संसार धर्म है, और उन सब से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हाँ, पापेभ्य, पापों से मैं मुक्त करूंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के शरण में जाने से केवल पाप से मुक्त कर देते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि परमात्मा का काम ही नहीं है तुम्हारे पाप से तुम्हारे को मुक्त कर दे। पाप करो और तुम और हटावे वो। यदि वो मुक्त करता है तो पाप से भी मुक्त करता है, पुण्य से भी मुक्त करता है। शंकराचार्य जी ने साफ लिख दिया है। हाँ, पापेभ्य पुण्यभ्य, पाप पुण्य दोनों से मुक्त करता है। और तुम उसके शरण में जाओ और केवल पाप से मुक्त करे फिर भी तुम्हारी बंधन सुरक्षित रहे, ये परमात्मा को मानने नहीं है बाबा। तुम्हारा बंधन केवल पाप का बंधन नहीं है, पुण्य का भी तो बंधन है। व्यक्ति गरीबी से समस्या में पड़ता है इतना ही नहीं है, अमीरी से भी समस्या में पड़ता है। वो गरीब धन नहीं है इसलिए समस्या में है, अमीर धन है इसलिए उसका इन्वेस्ट कैसे करें, उसका विनियोग कैसे करें, उसके रिसाइक्लिंग कैसे करें, कम समस्या है उसको। गरीबों को वो रिसाइक्लिंग की समस्या ही नहीं है, गरीबों को है वो संपत्ति की रिसाइक्लिंग की समस्या है, उनको है ही नहीं। उनको तो आज कम शाम के भोजन की समस्या थी, कल सुबह के भोजन की समस्या थी, मजदूरी कर लिया, आज टल गया, कल शाम का टल गया, कल सुबह फिर मजदूरी कर लेंगे, कल चलेगा फिर मजदूरी कर लेंगे, इतना कमाएंगे। तो 99 के चक्कर में तो गरीब नहीं पड़ते हैं, अमीर ही पड़ते हैं 99 के चक्कर में। आप लोगों ने सुना होगा ना 99 का चक्कर ना। एक राजा था, वो अपने शरीर के मालिश कराने के लिए एक बहुत बड़ा पहलवान को बुला के रखा था, और वो आता था रोज, मालिश करता था, वर्जिश कराता था, तेल मालिश। तो एक दिन राजा को ये लगा, उससे पूछा, अरे तू क्या खाता है, इतना ताकत है तेरे में? मैं बादाम खाता हूं, काजू खाता हूं, किशमिश खाता हूं, मेरे यहां 56 प्रकार के भोजन बनते हैं, वो सब खाता हूं, फिर भी मैं कमजोर हूं, और तू क्या खाता है बोल? बोले महाराज, हम तो फिर दो टाइम की बाजरे की रोटी खाते हैं और ऊपर से थोड़ा छाछ पी लेते हैं। सुबह भी बाजरे के रोटला 2-4 खा लेते हैं और छाछ पी लेते हैं और गुड़ खा लेते हैं। शाम को भी फिर 2-4 बाजरे की रोटी खाते हैं गुड़ के साथ और छाछ पी लेते हैं, वही है हमारा भोजन। बड़ा आश्चर्य भाई, इतनी से इतना ताकत तुमको। इसका कारण क्या है? तो मंत्री को बुलाए, इसका पता लगाओ तो ये क्या खाता है, पूछा तो नहीं। मंत्री को भेजा कि क्या खाता है, इतना ताकत इसके पास है, पता लगाओ। मंत्री ने पता लगाया तो बाजरा का रोटला गुड़ और छाछ पी लेता है। आके राजा को कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले वही रहा है और क्या करोगे। बोले ये पहलवान जो शक्तिशाली होने में कारण ये खाना पीना नहीं है, बाजरा का रोटी खाने से वो शक्तिशाली हुआ है, ऐसा नहीं है, इसका कोई और राज है। क्या राज है पता लगाओ। तो बोले थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ा आपके पैसा का भी खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयोग करेंगे। बोले हाँ ठीक है, जो कुछ कर रहा है पता लगाओ। तो एक दिन जो है वो मंत्री ने सोने के सिक्के 99 सोने के सिक्के एक थैली में डाला और उसके दरवाजे के आगे सुबह सुबह जाके रख दिया। दूसरे दिन सुबह उठा वो पहलवान, उसके पांव में जब लगा तो आवाज आई, तो खोल के देखा तो सोने के सिक्के। मालिश करने के एवज में राजा उसको रोज एक सोने का सिक्का देता था, वो सुबह और शाम के लिए उसको पूरा होता था, खाता था, निश्चिंत होकर सोता था। उसने उठाकर देखा तो हो 99, 100 नहीं, एक कभी है 100 में। इसको 100 बनाकर यदि रख लें तो आने वाले 100 दिन तो हम बिना काम के जी जाएंगे। कोई नहीं, आज जो जाएंगे राजा को मालिश करेंगे, 100 रुपया देगा, उसको लाके इसी में डल के ठीक से रख देंगे, बस 100 पूरा हो गए। गया मालिश किया, राजा ने 1 रुपया दिया, लाया उसको रखा और बांध बूंद के उसको रख दिया सुरक्षित। मंत्री ने दूसरे दिन भी 99 रुपया उसके सामने रख दी, पांव में लगा, देखता है अरे इसमें भी एक कमी है, चलो आज भी मालिश करेंगे, लाएंगे और एक रख देंगे तो 200 कंप्लीट होगा। आने वाले 200 दिन तो हम काम किए बिना ही जी सकते हैं। तीसरे दिन हो गए, उधर पत्नी पूछ रही है कि आज राशन पानी क्यों नहीं आया। वो बोलता है आज एकादशी है, तो कल तो एकादशी थी, आज फिर क्यों नहीं आया। तो आज फिर कुछ और बहाना बना दिया उसने। तो तीसरे दिन में जब ये हुआ, तीसरे दिन में उसने वो रुपया रख दिया। तीसरे और तीन तीन दिन जब खाएगा नहीं तो फिर कहां से ताकत आएगी। तो जब राजा के अब जा मालिश करने, तीसरे दिन तो उसके शरीर में ताकत तो थी नहीं। राजा ने कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारी ताकत कहां गई। नहीं नहीं, तीन दिन से जरा हमारा व्रत चल रहा था, उपवास चल रही थी, इसीलिए ताकत कमजोर हुई है। किस बात का व्रत भाई, अब क्या बतावे। वो बाद में जब मंत्री आया, महाराज उसके ताकत का राज हमने पता लगा लिया है। बोले क्या, वो 99 के चक्कर में नहीं पड़ा था तब तक उसकी ताकत सुरक्षित थी, 99 के चक्कर में पड़ गया ताकत चली गई। वो क्या है भाई, हमने ऐसा ऐसा प्रयोग किया, इसलिए तीन दिन से वो खा नहीं रहा, जमा करता जा रहा है, इसीलिए उसकी ताकत घट गई है। तो हमारी जो कमजोरी है वो सब 99 का चक्कर है, रिसाइक्लिंग उसको बड़ा, वो तो कम से कम रिसाइक्लिंग तो नहीं किया उसने, तो सुरक्षित रखा, हम तो और उसको कहां लगाएं, कैसे बने। देखो संसार इसी तरह चलता है। आत्ममुमुक्षु सबसे पहले मुक्त होने की इच्छा मन में जगी वो तो क्या करें। बोले तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, उसके शरण में जाओ तो आत्मा तत्संबंधी बुद्धि, आत्मबुद्धि और वही तत्प्रकाश है, इसलिए आत्मबुद्धि प्रकाशम, उसके लिए उस परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। तो ये भी बता रहे हैं कि हम उसके शरण में जा रहे हैं, मुमुक्षु हैं, इसीलिए आत्मा संबंधी बुद्धि के लिए हो जाए, या फिर उस बुद्धि में परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है। शुद्ध बुद्धि में ही तो परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है। बहुत सुंदर भाष्यकार शंकराचार्य ने इसका इतना सुंदर अर्थ किया है, बुद्धिस्तस्याः प्रसादकम्, प्रकाश शब्द का अर्थ प्रसाद भी कर दिया है, यानी परमात्मा की उपासना से बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है कि वह स्वच्छ हुई हुई बुद्धि में ही परमात्मा अपने स्वरूप को स्वतः प्रकाशित करता है। प्रसन्न ही परमेश्वरे बुद्धिरपि तद विषया प्रमाह निष्प्रपंचाकार ब्रह्मात्मनावतिष्ठते वर्तते। ये देखो प्रमा, प्रमा ये वेदांत का शब्द है। प्रमा माने वृत्ति, प्रमा वृत्ति, प्रमा अर्थ ज्ञान, प्रमाता, प्रमाण, प्रमा और प्रमेय। प्रमेय माने ज्ञेय, प्रमा माने जिसके द्वारा तुम जानते हो वो प्रमा, प्रमा माने ज्ञान, और उस ज्ञान का साधन क्या है? प्रमाण। प्रमाण किससे होता है? तो प्रमाता, प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमा ज्ञान उत्पन्न करता है, उस प्रमा ज्ञान के द्वारा प्रमेय ज्ञात होता है। तब उस परमात्मा के शरणागति से क्या होता है कि निष्प्रपंच माने प्रपंच से रहित शुद्ध बुद्धि, उस बुद्धि में प्रमा उत्पन्न होती है। प्रमा माने अखंडाकार वृत्ति, उसके द्वारा क्या होता है? बोले ब्रह्मात्मनावतिष्ठते वर्तते आत्मबुद्धि प्रकाशम इति अन्य अधीयते आत्मबुद्धि प्रकाशयति इति आत्मबुद्धि प्रकाशम। बुद्धि में परमात्मा संबंधी प्रकाश संचार होता है, और ये तो गीता में भी कहा ही है, मेरे शरण में आने वाले को मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति चरमंति च एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे जो मुमुक्षु हैं, शरणागति भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। जिस बुद्धि योग मेरे द्वारा प्रदान किए हुए बुद्धि योग द्वारा वह फिर मुझे ही प्राप्त करता है, संसार को प्राप्त नहीं करता है। प्रकृति के द्वारा दिया हुआ बुद्धि योग से वह प्राकृत संसार को प्राप्त करता है, मेरे द्वारा दिए हुए बुद्धि अप्राकृत है इसलिए वह मुझे ही प्राप्त करता है। एन माम उपयान्ति ते, इसीलिए उसके लिए हम सभी मुमुक्षु उसी परमात्मा के शरण में जाते हैं। यहां तक परमात्मा के तटस्थ लक्षण का स्वरूप वर्णन कर दिया। अब उस परमात्मा का जो स्वरूप है, जो आत्मबुद्धि प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होने वाला परमात्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है? निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धिंदन निवानलम। वो निष्कल है। कला, कलाओं की कई बार व्याख्या की है, 56 कला बोलो, 16 कला बोलो, एक कला बोलो, दो कला बोलो, ये सब कला क्या है? तो बोले माया के सब उपाधियां हैं। निष्कल है वह, उसमें जो आत्मबुद्धि प्रकाश द्वारा प्रकाशित होने वाला तत्व है वह निष्कल है, उसमें कोई माया और माया की छाया वहां विद्यमान नहीं है। निष्कलम निष्क्रियम, सारी क्रिया माया में है और माया का स्पर्श नहीं है तो वह निष्क्रिय है। जैसे बादल सब आकाश में उड़ते हैं तो सारी क्रियाएं गति बादल में दिखती है, लेकिन बादल में होते हुए वो सब क्रिया आकाश में ही, बादल में सारी क्रिया होने पर भी आकाश में कोई क्रिया नहीं। इसी तरह परमात्मा जो स्वरूप लक्षण वाला परमात्मा है उसमें कोई क्रिया नहीं है। शांतम, उसमें कोई विचलन नहीं है, परिणाम नहीं है। निरवध्यम, निर्दोष है, दो अवखंडने निरवध्यम, वध्य माने दोष, निरवध्य माने निर्दोष। निरंजनम, अंजन माने पाप आदि, कर्मदोष ही अंजन है, और निरंजन माने उसमें कोई कर्मदोष नहीं है। अमृतस्य परम सेतुम हेतुम, सेतु शब्द का अर्थ होता है हेतु। वह परमात्मा अमृतत्व का हेतु है, माने स्वरूप ही है, क्योंकि उसी को अपरोक्ष किए बिना अमृतत्व की उपलब्धि न होने के कारण वह खुद अमृतत्व होने के कारण तुम्हें भी उसकी प्राप्ति ही अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु है, उसके अलावा अमृतत्व की प्राप्ति का कोई और विकल्प नहीं है। अमृतत्व परम सेतु दग्धेन्धन मिवानलम, किस तरह है तो बोले दग्ध इंधनम इव अनलम इव, जैसे ईंधन बोलते हैं ना लकड़ी, लकड़ी जितनी कच्ची होगी उतने ही उस लकड़ी में एक तो अग्नि का संचार होना असंभव है, गीली लकड़ी हो और कच्ची लकड़ी हो तो उसमें अग्नि का संचार होना असंभव है, सामान्य अग्नि का तो संभव है, विशेष अग्नि का संचार होना संभव नहीं है, क्योंकि लकड़ी चाहे सूखी हो चाहे गीली हो लकड़ी में अग्नि तो सामान्य अग्नि तो है ही है, लेकिन वो सामान्य अग्नि की प्रतीति नहीं होती है, प्रतीत होने के लिए तो विशेष अग्नि चाहिए, लकड़ी गीली हो और कच्ची हो तो उसमें विशेष अग्नि का संचार होना ही संभव नहीं है, और कदाचित किसी प्रकार से विशेष अग्नि का संपर्क भी हो गया है तो उससे धुआं इतने निकलेंगे कि अग्नि दिखाई ही नहीं पड़ेगा, धुएं ही धुआं निकलेंगे, तो अग्नि का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो कहा कि जब वो लकड़ी अच्छी तरह, एक तो अच्छी तरह सूखी हुई हो, उसमें भी वह अग्नि संचार होने के बाद अच्छी तरह जल गया है, ईंधन पना जलने की जो कुछ थे संभावना उस लकड़ी में वो सब कुछ जल गया है, तब केवल अग्निमात्र विद्यमान है, उसमें न धुआं है न कुछ है, न ज्योति है न धुआं है, अग्निमात्र है। इसलिए दग्ध ईंधनम इव अनलम इव, सभी कच्चापना निकल गया, गिल्लापना निकल गया, ऐसे ही हमारी जो है वासना ही ये गिल्लीपना है कच्चापना है, ये सब निकल जाएगा तब फिर हमारा स्वरूप वो परमात्मा का स्वरूप हमारे हृदय में ऐसा प्रकट होगा कि न धुआं है न ज्योति है, इस तरह वह केवल प्रकाश मात्र है। ऐसे परमात्मा का अपरोक्ष होता है तब वह साक्षात अमृतत्व की प्राप्ति का हेतु है। अब ये पहले भी कहा था तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उस श्रुति को यहां आकर पुनः स्पष्ट कर रहे हैं, उस परमात्मा को जाने बिना मुक्ति का मोक्ष का कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसी ने कहा होगा कि हजार उपाय हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि उसके जाने बिना कोई उपाय नहीं है, बोले संभव ही नहीं है। यदा चर्मवदाकाशम व्यष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। मुमुक्षुओं में वेदांतियों में और संसारियों में यही अंतर है, दुख का अनुभव सभी कर रहे हैं और सभी दुख के नाश करने के लिए दुख से छूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिससे दुख छूटा जा सकता है उस पर कोई प्रयत्न नहीं करता है, कोई कोशिश नहीं करता है, अन्य विकल्पों से दुख को हटाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह दुख हटाने की जो कोशिश है वही दुख के रूप में परिणत होकर उसके सामने दुख के रूप में विद्यमान हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि धन कमाएंगे, धन से हमारा दुख दूर होगा, इसीलिए धन कमाने में हम प्रवृत्त होते हैं, लेकिन धन कमाने की जो प्रक्रिया है वही दुख का कारण बनकर हमारे सामने विद्यमान है, न शाम को ठीक से खा पाते हैं, न शाम को ठीक से सो पाते हैं, न कहीं चैन से घूम पाते हैं, न कहीं कुछ है। लेव जी, दुख के शांति के लिए नाश के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वही दुख का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि ये दुख का नाशक नहीं है ये सब। फिर दुख का सर्वथा दुख का नाशक क्या है? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसको जाने बिना दुख का स्वरूप से नाश नहीं होगा। तो यहां उपनिषद ने ये कह दिया, चुनौती दी है आज भौतिक विज्ञान को ये मंत्र, यदि यदा चर्म वद आकाशम व्यष्टयिष्यन्ति मानवा, संसार में रहने वाले मनुष्य लोग चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, उनके लिए चुनौती है। हे संसार के मनुष्यों, मानवाः श्रूयताम, सुनो, ध्यान से सुनो, संबोधन है श्रुति का। यदि आकाश को तुम दरी की तरह लपेट सकते हो, यदि या चुनौती है ये, यदि आकाश को तुम चटाई की तरह दरी की तरह लपेट सकते हो, तब तो परमात्मा को जाने बिना भी तुम्हारा दुख शांत होगा। और यदि कहते हो कि नहीं, आकाश को तो हम चटाई की तरह लपेट नहीं सकते हैं, तो ये निश्चय समझ लो कि परमात्मा को जाने बिना तुम्हारा दुख का शांत अंत होगा नहीं। यदा चर्मवदा का संविष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवम अभिज्ञाय दुखस्यांतो भविष्यति। क्योंकि यह असंभव है, आकाश को चटाई की तरह लपेटना असंभव है, इसी तरह परमात्मा ज्ञान के अलावा अन्य विकल्पों से दुख का अंत असंभव है। इस श्रुति का एक चुनौती है, चैलेंज है। तो जब इस बात को जब हम सुनते हैं, तब एक ही बुद्धि में एक निश्चय हो जाता है, दुख त्रय से सर्वथा विनिर्मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हमको सर्वथा सर्वभावेनः उस आत्मज्ञान के लिए ही श्रवण मनन निदिध्यासन का प्रयत्न करते रहना चाहिए। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।